Sri Chaitanya Manovistam Stapitam Eda Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpata Rupescha Kripa Sindhu Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna तो आज हम चर्चा करेंगे एक विशेष विषय के बारे में कि किस प्रकार से हमें भगवान कृष्ण की जो प्राप्ति है हमारे जीवन में सरलता से हो सकती है। तो शास्त्रों में बहुत अधिक स्थानों पर हमें हमेशा उत्साहित किया जाता है, प्रेरित किया जाता है कि ये जो मनुष्य जीवन है वो बहुत अधिक क्या है, दुर्लभ है। अभी हम पूरा मनुष्य जीवन अपना बिताते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक, बुढ़ापा आ जाता है, फिर भी हमें ज्ञात नहीं होता कि मेरे पास एक बहुत मूल्यवान वस्तु है और वो मूल्यवान वस्तु क्या है, ये शरीर। बल्कि जिसकी सबसे अधिक निंदा की गई है शास्त्रों में, इस शरीर के बारे में शास्त्रों में बहुत अधिक वक्तव्य किए गए हैं जो बहुत निंदापूर्ण है। लेकिन एक चीज के लिए हमें सावधान करते हैं शास्त्र कि एक मूल्यवान चीज आप अपने साथ रखे हो, यदि उसका सही इस्तेमाल करते हो तो कृष्ण को आप अपना बना सकते हो। हाँ, जैसे छोटे से बालक है प्रहलाद, जब प्रहलाद स्कूल से वापस आए, अपने बच्चों को आप बाहर ले जा सकते हैं, बच्चे यदि आवाज करते हैं तो हाँ, फिर से बोलेंगे नहीं। तो प्रहलाद जब वापस आते हैं स्कूल से तो उनके पिता हिरण्यकश्यपु उनको एक प्रश्न पूछते हैं। कौन सा प्रश्न पूछते हैं? अभी हमारे बच्चे स्कूल से वापस आते हैं तो हम पूछते हैं, बेटा खाया कि नहीं खाया जो डब्बा बना के दिया था भोजन स्कूल में? कभी बाकी चीजें नहीं पूछते। लेकिन हिरण्यकश्यपु आसुर होने के बावजूद भी शास्त्र कहते हैं बहुत बुद्धिमान था हिरण्यकश्यपु, क्योंकि पूर्व जन्म में कौन थे, वो भगवान के भक्त थे, जय या विजय दोनों में से एक। तो ऐसे हिरण्यकश्यपु ने अपने छोटे से बालक प्रहलाद से पूछा, प्रहलाद तुम स्कूल में इतने महीने बिताए बोर्डिंग स्कूल में, तुम क्या सबसे अच्छी चीज सीख के आए हो वो मुझे बताओ। तो प्रहलाद क्या बताते हैं, भगवान कृष्ण के वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दाशम, सख्यम आत्मनिवेदनम। कहते हैं कि ये जो नौ प्रकार है इनके माध्यम से भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए व्यक्ति को। और जब ये सुना हिरण्यकश्यपु ने तो प्रहलाद को उठाता है, ऐसे जोर से फेंक देता है, छोटा सा बच्चा है 5 साल का, ऐसे प्रहलाद ने एक चीज की और एक अमेजिंग शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि जिस भी व्यक्ति के पास ये मनुष्य का शरीर है उसको एक चीज का ज्ञान आवश्यक है। कौन सा ज्ञान? कौमारमाचरतः प्राज्ञा धर्मान भागवतानिह। वो कहते हैं कि व्यक्ति को 5 साल की आयु से ही भगवत ज्ञान अर्जित करना चाहिए। बल्कि हम सोचते ज्ञान हमारे जीवन में क्या आवश्यक है, और वास्तव में मनुष्य जीवन अज्ञान में रहने के लिए नहीं दिया गया है। जो अज्ञान में रहता है उसकी तुलना पशु से की गई है। हाँ, कुत्ते बिल्ली सुअर आदि से वो उच्च नहीं है। यदि जिसके पास भगवत ज्ञान नहीं है, कोई व्यक्ति हो सकता है कि भौतिक रूप से वो बहुत पढ़ा लिखा है, पीएचडी डिग्री उसने भौतिक रूप से हासिल की है, लेकिन उस व्यक्ति के पास यदि भगवान का ज्ञान नहीं है वो व्यक्ति अज्ञानी है। अज्ञानी है या उस व्यक्ति का जीवन अंधकारमय है। तो इसलिए वो कहते हैं दुर्लभम मानुषम जन्मम तदपि अध्रुवम। प्रहलाद 2 वाक्य बोलते हैं। प्रहलाद कहते हैं कि 5 साल की आयु से भगवान का भजन करना शुरू कर दो। अभी बच्चा जन्म लेता है तो उसको कौन सा ज्ञान सबसे पहले हो जाता है? मोबाइल का, गेम्स, एप्स। हाँ, मैं अपने ब्रदर से मिलने गया था, उसके छोटे से बच्चे हैं, वो दुनिया भर के मोबाइल एप्स और सब में एक्सपर्ट हो गए हैं, अभी बोलना भी नहीं आता है। लेकिन वैसे ही ये किसकी कमी है? माता पिता की। किसकी कमी है? माता पिता जिम्मेदार है। तो प्रहलाद कहते हैं कि बचपन से ही भगवत ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास ये दुर्लभ मनुष्य देह मिला है। क्योंकि वो कहते हैं दुर्लभ है, लेकिन और एक बात प्रहलाद कहते हैं, दुर्लभ मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम। ध्रुव का मतलब होता है शाश्वत, एक प्रकार से या निरंतर। दूसरा एक अर्थ होता है, वो कहते हैं अध्रुवम मतलब ये शरीर आपके पास शाश्वत रहने वाला नहीं है, कुछ ही दिनों के लिए ये शरीर हमें दिया है। और ये शरीर किसकी चीज से बना हुआ है? माल, मूत्र, गंदगी, ब्लड, हड्डियां, मांस, ये सारे गंदगी से बना हुआ ये शरीर है। लेकिन ये शरीर एक बहुत बड़े रत्न के समान है। ऐसे रत्न को आप भगवान के चरणों में अर्पित कर सकते हो, जिसके बदले में आपको क्या मिल सकते हैं? कृष्ण मिल सकते हैं। हाँ, प्रभुपाद का एक वाक्य में कल पढ़ रहा था। प्रभुपाद कहते हैं कि एक जीवन कृष्ण के लिए दे दो। क्या करो? एक जीवन, एक लाइफ टाइम। हमने कई अपना कई जीवन भौतिक जगत में सुख की खोज में लगाए हैं, लेकिन फिर भी हमें सुख हासिल नहीं हुआ है। वो कहते हैं प्रभुपाद कि एक जीवन आप कृष्ण के लिए दोगे तो निश्चित रूप से आप जो शाश्वत सुख है उसकी अनुभूति कर सकते हो। तो इसलिए ये जो मनुष्य जीवन है ये बहुत ही बहुत अधिक दुर्लभ है, लेकिन ऐसे दुर्लभ जीवन में हमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है उसको प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए प्रहलाद अपने दूसरे एक श्लोक में कहते हैं नमे विदु स्वार्थ गति में विष्णु। वो कहते हैं कि क्या ऐसी चीज है जो हमें अपने जीवन में प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, या क्या हमारा असली स्वार्थ क्या है? प्रहलाद कहते कि एक ही स्वार्थ है हमारे जीवन का, और वो कौन है? विष्णु है, कृष्ण है, भगवान को अनुभव करना, भगवान के प्रति हृदय में 100% प्रेम की भावना जागृत करना, यही हमारा क्या है? असली स्वार्थ है। और इसलिए दूसरा छोटा सा बालक, कौन थे दूसरे बालक भक्त? ध्रुव महाराज। हाँ, ये छोटे छोटे बच्चों ने क्या कर दिया? अपने जीवन में भगवत प्राप्ति कर ली। यदि हम अपने जीवन में देखें कि हम मृत्यु के कगार में खड़े हैं तो भी भगवत ज्ञान का लेश मात्र भी हमारे पास नहीं है। ध्रुव ने केवल 6 महीने में भगवत प्राप्ति की और जब भगवान उनके सामने प्रकट हुए तो भगवान ने कहा, ध्रुवा तुमने इतनी कठोर तपस्या की है, मुझे संतुष्ट किया है, बताओ क्या मैं तुम्हें दूं या मैं तुम्हें सबसे बड़ा राज्य प्रदान करता हूं। ध्रुव महाराज कहते, स्वामिन कृतार्थोऽस्मि वरम न याचे। हे कृष्णा, मैं अभी पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो गया हूं। किससे संतुष्ट हो गया हूं? आपको देखने मात्र से, अपने जीवन में आपको प्राप्त करने मात्र से मैं संतुष्ट हो गया हूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मैं तो आपके पास आया था। ध्रुव महाराज भगवान के पास क्यों गए थे? क्यों गए थे? ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य चाहिए था। मतलब इस भौतिक जगत से बढ़कर क्या हो सकता है? केवल एक ही चीज, आध्यात्मिक जगत, वैकुंठ, वो राज्य चाहिए था उनको। क्योंकि इस भौतिक जगत में आप कितने भी बड़े बनते हो तो एक न एक दिन विनाश हो जाएगा। कितने बड़े सम्राट आ गए, अलेक्जेंडर द ग्रेट आ गया, सारे विश्व को जीत लिया, लेकिन अभी वो सब लोग कहां चले गए? काल के प्रभाव से सब लोग क्या हो गए हैं? खत्म हो गए हैं। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जब ध्रुव महाराज को इतना बड़ा राज्य भगवान देने के लिए तत्पर थे वैकुंठ का, लेकिन ध्रुव महाराज ने भगवान को देखने मात्र से कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं तो आपके पास एक मूर्ख व्यक्ति की तरह आया था कांच के टुकड़े मांगने के लिए। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति का असली स्वार्थ कुछ होना चाहिए तो वो यही होना चाहिए कि किस प्रकार से मैं अपने जीवन में भगवत प्राप्ति करूं या भगवान को अनुभव करूं। अरे, मनुष्य जीवन केवल उसी चीज के लिए मिला है। लेकिन इसके विपरीत यदि देखो, जो भगवान के भक्त नहीं है या जो भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते, वो इस भौतिक जगत के सुख के प्रति पागल हो रहे हैं। इसलिए ऐसे पूर्व समय में भी 2 प्रकार के लोग हमेशा हैं। एक भगवान के भक्त है और दूसरे अभक्त है। उसी को शास्त्रों में, गीता में कृष्ण कहते हैं कि एक देवता है और दूसरे कौन है? आसुर है। ये हमेशा पृथ्वी में रहते हैं। तो पहले भी ऐसे ऋषि मुनि थे जिन्होंने भगवत सेवा में अपना जीवन अर्पित किया, और उस समय भी ऐसे ऋषि थे जो भगवत सेवा से लोगों को दूर भेजते थे। जैसे चार्वाक मुनि, एक मुनि थे, उन्होंने कहा, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत् जीवेत सुखम जीवेत। वो कहते हैं आपको कर्जा लेना पड़े तो भी ले लो, लेकिन क्या करना चाहिए व्यक्ति को? घी से बनी हुई चीजों को खाना चाहिए। कर्जा ले लो लेकिन जीवन भर किससे खाओ भोजन? घी से पका हुआ। हाँ, वो कहते किसने देखा, भस्मी भूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमनं भवेत्। यदि ये शरीर किसने देखा, मरने के बाद एक बार भस्म हो जाएगा तो फिर से कोई जन्म नहीं है। तो ऐसी शिक्षा देने वाले भी कुछ ऐसे लोग थे जो प्रेरित करते थे कि भौतिक जीवन ही सर्वे सर्वा है। अरे, वास्तव में अज्ञानता है। जैसे उनकी तुलना आजकल के विज्ञानियों से की जा सकती है, साइंटिस्ट, जो हमें यही सिखाते हैं कि जो जीवन आपको दिख रहा है 100 साल का, 60 साल का, 70 साल का, वही सब कुछ है। तो इस प्रकार से व्यक्ति को जानना चाहिए कि असली जीवन का स्वार्थ क्या है और उस स्वार्थ को मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। इसलिए पुराणों में एक बहुत ही मूल्यवान श्लोक आता है, जिस श्लोक में कहा गया है संसार विष वृक्षस्य। वो कहते हैं ये जो संसार जिसमें आप जीवन यापन कर रहे हो, इसकी तुलना एक वृक्ष से की गई है। कौन सा वृक्ष? विष वृक्ष। मतलब उसको स्पर्श करने मात्र से आपकी मृत्यु निश्चित है, इतना भयावह वृक्ष है। लेकिन कहते हैं कि ये विष वृक्ष हो भी, लेकिन इस विष वृक्ष को दो फल आते हैं, और वो फल कौन से हैं? वो कहते हैं कि एक फल है भगवान मुकुंद के प्रति भक्ति, और दूसरा है ऐसे मुकुंद की सेवा में लगे हुए भक्तों की भक्तों का संग। दो फल क्या है? एक है भगवान की भक्ति और दूसरा है भगवान के भक्तों का संग। कहते कि ये संसार इतना कठोर है क्योंकि जिसने भी इस संसार में सुख भोगने का प्रयास किया है उसके जीवन में निराशा आई गई है। सोचो जो सिकंदर था, अलेक्जेंडर, जिसने पूरे विश्व को जीता, लेकिन जब उसकी मृत्यु आई तो मृत्यु से पूर्व उसने अपने लोगों को कहा कि जब मुझे आप दफनाने के लिए ले जाओगे तो जो रास्ता है वो हीरे मोती माने के सारे सारा धन उसमें फैला दो, हाँ, जब तक मुझे ले जाया जाएगा दफनाने की जगह से लेकर मेरे महल तक, और दूसरा मुझे जब कंधे लगाएंगे तो चार लोग होने चाहिए। कौन से लोग? वैद्य, उस समय तो वैद्य हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा जो बेस्ट डॉक्टर्स हैं वो मुझे लेके जाए, चार लोग, चार डॉक्टर्स, और जब मुझे दफना दोगे तो मेरे जो हाथ है यहाँ से ऊपर ऐसे ऊपर रख दो। अभी इतना बड़ा राजा जिसने पूरे विश्व को जीता था, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि क्यों ऐसा बोल रहे हो, क्यों, क्या रीजन क्या है, कारण क्या है। तो फिर भी डरते हुए एक सेनापति उनका जो था उसने सिकंदर या अलेक्जेंडर को पूछा, तो उसने कहा कि मैं सारे जगत के लोगों को एक शिक्षा देना चाहता हूं, एक एक सिखाना चाहता हूं सारे जगत के लोगों को। क्या सिखाना चाहता हूं? उन्होंने कहा कि इस संसार के लोग इन चीजों के लिए अपना जीवन यापन करते हैं, अपना जीना भूलकर, एक तो धन अर्जन करने के लिए, और जब धन आ जाता है तो टैक्स से उसे बचाने के लिए, और फिर धन एक्स्ट्रा हो जाए तो अपने रिश्तेदार है, परिवार के लोग हैं, उनसे छुटकारा चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि सारे जगत को ये पता चले कि मैंने सारे जगत का धन जीत लिया, लेकिन जब मेरी मृत्यु आ रही थी तब मैं अपने साथ वो धन का एक अंश भी नहीं ले जा पाया। और दूसरा उन्होंने पूछा ये डॉक्टर्स क्यों, वैद्य क्यों तुम्हें ले जाए? तो उन्होंने कहा कई बार व्यक्ति सोचता है जब जीवन यापन करता है कि इतना इकट्ठा करो धन, जब बीमारी आ जाए, मृत्यु का समय आ जाए तो अपोलो में भर्ती हो जाओ ताकि मेरा ट्रीटमेंट क्या हो, सबसे अच्छा हो, मृत्यु से बच सकता हूँ, कई बार सोचते हैं हम। लेकिन वो बताना चाह रहे थे अलेक्जेंडर कि मेरे पास बेस्ट वैद्य थे, जगत के बेस्ट डॉक्टर्स जो मुझे कंधा लेके जा रहे हैं वो मुझे बचा नहीं पाएंगे। और वैसे ही फिर तीसरी चीज उन्होंने कही, हाँ, कि मेरे हाथ बाहर रख दो, जब मुझे दफनाओगे तो सारे जगत को ये पता चले कि मैंने पूरे विश्व पर राज्य किया, विश्व की हर भोग की सामग्री मेरे महल में थी, मेरे पास थी, लेकिन मृत्यु के समय में उसे अपने साथ नहीं ले जा पाया। तो इसी कारण से हाँ ये जो संसार है ये बहुत क्रूर है, यदि आप उसको भोगने का प्रयास करोगे तो एक ना एक दिन आपको उसके सामने अपने घुटने टेकने पड़ेंगे। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या है, उससे पहले ही भगवान का जो ज्ञान है वो अर्जन करता है और उसके अनुसार अपना जीवन यापन करता है। इसलिए पुराणों में कहा गया है कि ये संसार विष का सागर है या विष का वृक्ष है, लेकिन दो इसमें फल है। इस संसार से किस चीज को हमें लेना ही है तो इन दो चीजों को असीम मात्रा में ले लो। कितनी मात्रा में? असीम। हाँ, पहली चीज है भगवान की भक्ति। भक्ति का मतलब है भगवान और एक भक्त के बीच में जो सेवा का आदान प्रदान है उसे क्या कहा जाता है? भक्ति कहा जाता है, क्योंकि भक्ति संस्कृत का एक शब्द है भज, भज एक मूल शब्द है, उस शब्द से ये भक्ति शब्द बनता है। और भज शब्द का अर्थ क्या है? सेवा। तो भक्ति का मतलब है भगवान और भक्त के बीच में सेवा का जो आदान प्रदान है उसको क्या कहा गया है? भक्ति कही गई है। तो इसलिए सेवा के द्वारा ही हम अपने जीवन में सुख की अनुभूति करते हैं। सोचो महात्मा गांधी को महात्मा कहते हैं लोग, उन्होंने देश की सेवा की। क्यों वो सेवा कर रहे थे? क्योंकि उसके द्वारा उनको एक प्रकार का आनंद मिल रहा था। सोचो गांव में व्यक्ति अपने पत्नी बच्चों को छोड़ता है, शहर में आकर कुछ जो मिले वो खाता है, दिन रात काम करता है, पैसे इकट्ठा करता है, अपने ऊपर कम खर्च करता है, और जब पैसे आते हैं तो हमेशा आनंदित हो जाता है कि ये मैं किसको भेजूंगा? परिवार वालों को, जहां मेरे बच्चे पढ़ेंगे, पत्नी घर में निवास कर रही है। तो ये सोच के उसको आनंद मिलता है। क्यों? क्योंकि उनके लिए वो सेवा कर रहा है। तो सेवा में आनंद है। लेकिन इस भौतिक जगत में हम चाहे जितनी मर्जी भौतिक संसार की सेवा करें, उसके द्वारा हम पूर्ण आनंद की अनुभूति नहीं कर सकते, जब तक जो सेवा के मूल स्रोत है कृष्ण, उनकी यदि सेवा ना करें। ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से श्रील प्रभुपाद सरल उदाहरण दिया करते थे कि जब तक व्यक्ति पेट को भोजन नहीं देगा तब तक पूरे शरीर को शक्ति नहीं प्राप्त होगी, जब तक पेड़ के जड़ को पानी नहीं दोगे तब तक पूरे पेड़ हरा भरा नहीं हो सकता। तो इसलिए किसी चीज पर हमें फोकस करना है तो वो है भगवत भक्ति या भगवान की सेवा। और दूसरा क्या है फल? दूसरा फल है भगवान के भक्तों का संग। क्योंकि भक्ति तो बहुत दूर की वस्तु है, भगवान बहुत दूर की वस्तु है, उससे पहले क्या आता है? भक्त आते हैं। जैसे गीता के दूसरे अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति सुख चाहता है, लेकिन व्यक्ति को ये जानना चाहिए कि सुख से पहले क्या चीज आती है जीवन में, वो आ जाए तो व्यक्ति को समझना चाहिए सुख आने वाला है। तो भगवान गीता में कहते हैं शांति, वो कहते अशांत शतः सुखम। इसका मतलब है कि व्यक्ति के जीवन में पहले शांति आनी चाहिए, और शांति के अगला स्टेप क्या है? सुख है। तो उसी प्रकार से भगवान या भगवान की भक्ति हमसे बहुत दूर है, लेकिन एक चीज है जिसके द्वारा जिसके माध्यम से हम भगवान को समझ सकते हैं और भक्ति को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि भगवान और भक्ति और भगवान के भक्त, ये तीन चीजें ये जगत के नहीं है, भगवान ये जगत के नहीं है। इसलिए गीता में कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म छा मैं देव्या एवं यो व्यक्ति तत्वतः, कि मेरा जन्म लेना मेरा कर्म करना ये इस जगत के लोगों के समान नहीं है, बाहरी रूप से दिखता है लेकिन वो दिव्य है। तो उसी प्रकार से भगवान की जो भक्ति है वो भी इस जगत की वस्तु नहीं है। हाँ, इस जगत में भी हम भोजन करते हैं, खाते हैं, और दूसरा है भगवान को अर्पित करके प्रसाद पाते हैं, वो भक्ति है। तो दोनों में अंतर है। जब आप खुद बनाते हो, अपने भोगों के लिए खाते हो, तो आप क्या खाते हो? पाप खाते हो, और जिसका परिणाम जीवन में कई प्रकार के कष्ट है। लेकिन भगवान कहते हैं केवल वही भोजन है जब मुझे अर्पित करके खाते हो तो प्रसाद में परिवर्तित होता है, और उसका परिणाम क्या है? सुख है। तो यही है कि दिखने में वही कार्य लगते हैं कि अरे भक्त लोग भी तो ट्रैवल कर रहे हैं, भक्त भी हमारे समान ही कार्य करते हैं, लेकिन अंतर है, क्योंकि उनके सारे कार्य किससे संबंधित है? भगवान से। हमारे सारे कार्य अपने इंद्रियों का भोग करने से संबंधित है। कैसे मैं अपने इंद्रियों को भोगू जिसके लिए हम दिन रात कार्य करते हैं। तो इसी कारण से जो भक्ति है वो इस जगत के नए हैं, और तीसरा भगवान के जो भक्त है, जो भी भगवान के संपर्क में होता है वो भगवान के समान ही दिव्य हो जाता है। जैसे लोहा है, लोहे को आप आग में रख दो तो लोहा क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, और वो लाल लोहा जब आप किसी वस्तु को लगाते हो तो वो भी आग के समान कार्य करता है। तो उसी प्रकार से भगवान के भक्त है, क्योंकि वो भगवान से संबंधित है, भगवान से कनेक्टेड है, जिसके कारण वो भी इस भौतिक जगत के नए हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद। तो इस प्रकार से ये सरल चीजें हमें जाननी चाहिए, और फिर भगवत भक्ति को समझने का प्रयास करना चाहिए। किसके माध्यम से? भक्तों के माध्यम से। तो जितना हमारे पास समय है मैं चर्चा करूंगा कि किस प्रकार से व्यक्ति भक्तों के संपर्क में आ सकता है, और उनके संपर्क में आकर कैसे सरलता से भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो यदि हम सोचे हैं कि भगवान के जो भक्त है वो दिव्य है, तो यदि हमें भी दिव्य बनना है तो हमें क्या करना होगा? उनके संपर्क में आना होगा। तो मैं प्रश्न पूछूंगा कि भगवान के भक्तों के संपर्क में हम कैसे आ सकते हैं, बताइए, कौन बताएगा? कैसे भक्तों के संपर्क में आप आए हो या आते हो? मंदिर के द्वारा, और संकीर्तन। हाँ, तो तीन प्रकार से हम भक्तों के संपर्क में आते हैं, और वो तीनों प्रकार बहुत पावरफुल है। यदि कोई व्यक्ति इन तीनों में से एक को भी पकड़ लेता है तो निश्चित रूप से उसके जीवन में टाइम नहीं लगेगा कृष्ण के प्रति अपने हृदय में अहेतु की और बहुत तीव्र जो प्रेम की भावना है वो उजागर करने में। पहला प्रकार है भगवान के भक्तों के संपर्क में हम आते हैं भगवान कृष्ण के बारे में श्रवण करके। हाँ, उनके द्वारा क्या करते हैं, किसके बारे में सुनते हैं? किसके बारे में? कृष्ण के बारे में। तो ये पहला पावरफुल प्रोसेस है या टूल है। हाँ, भक्तों के संपर्क में आते हैं, उनसे हम सुनते हैं, जिसके द्वारा हम कृष्ण को अनुभव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा प्रकार है जो भगवान के महान भक्त है उनके बारे में हम सुनते हैं। पहली विधि क्या है? उनसे भगवान के बारे में सुनना, और दूसरा उनके बारे में ही सुनना, उनके दिव्य चरित्र के बारे में। और तीसरी विधि है उनके जो उपदेश है, उनकी जो वाणी है, उसको अपने जीवन में क्या करना? लागू करना। ये तीन पावरफुल विधियां हैं जिसके द्वारा हम किसी भक्तों के संपर्क में आते हैं, और इन तीन चीजों को यदि हम पालन करते हैं गंभीरता से तो कृष्ण हमारे जीवन में आ सकते हैं। ये जो भगवत भक्ति है ये सारा खेल केवल संघ का है। किस चीज का है? संघ का। प्रभुपाद ने कहा आपको बेस शराबी बनना है तो आपको किसका संग करना पड़ेगा? शराबी व्यक्ति का संग करना पड़ेगा, तो आप पक्के पियंगड़ हो जाओगे। उसी प्रकार से आपको भगवान का बेस भक्त बनना है, भगवान का भक्त बनना है, तो भगवान के भक्तों के संगति में आना पड़ेगा, जिस प्रकार से आप आए हो। तब हम क्या होगा कि भगवान को समझना हमारे लिए सरल हो जाएगा। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते थे, एक राजा जब चलता है अपना मुकुट धारण करके, तो उस समय हवा आती है, और हवा में धूल भी आती है या मिट्टी आती है, तो हवा का जब संग जमीन में जो मिट्टी है या धूल है वो जब हवा का संग करती है तो जाकर राजा के मुकुट पर बैठती है, और वही धूल जब पानी का स्पर्श करती है या पानी का संग करती है तो राजा के कहाँ जाती है? पांव के नीचे। तो उसी प्रकार से हमारा जीवन है। यदि हमें वास्तव में अपने जीवन को महिमा मंडित बनाना है तो हमें भगवान के भक्तों का संग करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, अन्यथा हमारा जीवन कैसे होगा, नरक कामी होगा। जैसे धूल जब पानी का संग करती है तो पांव के नीचे आती है, हवा का संग करती है तो सर के ऊपर बैठती है, ताज या उसके ऊपर बैठती है, मुकुट के ऊपर। तो उसी प्रकार से एक व्यक्ति का जीवन है तो भक्तों का जो जीवन है या जो भगवत भक्त है वो कैंडी के समान है, शुगर कैंडी के समान। अब किसी भी प्रकार से उस महान भक्त के संपर्क में आ जाओ, आपके जीवन में कौन मिलने वाले हैं आपको, कृष्ण मिलने वाले हैं। जैसे सोचो सनातन गोस्वामी का उदाहरण आता है वृंदावन में। सनातन गोस्वामी वृंदावन में एक महान भक्त हुए हैं। तो एक बार एक व्यक्ति थे जिनके घर में दो बेटियां थी, तो एक बेटी बड़ी हो गई, उसका विवाह करना था तो घर में पैसे नहीं थे, तो पत्नी ने कहा भागो जाओ काशी जाओ, शिव जी के पास जाओ, शंकर महादेव के पास, उनको थोड़ा स्तुति गान करो, उनसे कुछ धन प्राप्त करो जिसके द्वारा हम बेटी की शादी कर सकते हैं। तो वो जाते हैं काशी में और वहां जाकर शिव जी को निवेदन करते हैं। तो शिव जी महादेव उनको कहते हैं कि देखो मेरे पास तो पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है, मैं तो पार्वती के साथ पेड़ के नीचे रहता हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जिसके पास बहुत धन है, आप कहाँ चले जाओ, वृंदावन चले जाओ। अब वृंदावन में एक भक्त है जिसका नाम है सनातन गोस्वामी और वो वृंदावन में यमुना के किनारे एक टीला है, द्वादश आदित्य टीला, हाँ उसके ऊपर रहते हैं। तो ये व्यक्ति गए क्योंकि घर जाएंगे तो पत्नी छोड़ेंगे नहीं, मार के भगा देंगे उसको। तो वो गया वृंदावन, काशी टू वृंदावन यात्रा। तो वृंदावन जब पहुंचा तब वृंदावन में सनातन गोस्वामी एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपना जप माला लेकर क्या कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सनातन गोस्वामी निरंतर भगवान नाम का उच्चारण कर रहे थे अपनी जीवा से। ये व्यक्ति गया, उनको प्रणाम किया और उनको कहा कि मुझे धन की आवश्यकता है। अभी वो सनातन गोस्वामी कहते हैं अच्छा तुम्हें धन चाहिए, वो कहते बेटी का विवाह करना है उसके लिए धन चाहिए। तो ये सनातन गोस्वामी कहते देखो उस किनारे में कुछ कूड़ादान पड़ा है, उसमें पारस पत्थर पड़ा हुआ है, वो पारस पत्थर ले जाना और उसके द्वारा क्या करो सोना बना लो, टस्ट हो लोहे को स्पर्श करोगे तो लोहा परिवर्तित हो जाता है सोने में। हाँ तो ये व्यक्ति गया और पूछता, ये उसने उठाया सही में देखा कूड़ादान इधर उधर किया, पारस पत्थर उसे मिल गया और वो गया पूरा नाचते गाते हुए घर पहुंचा। किसके पास पहुंचा, किसके पास, पत्नी के पास। पत्नी तो और बुद्धिमान थी, उसकी बुद्धि ज्यादा ही चलती थी। उसने कहा कहां से लाया वो पारस पत्थर, उसने कहा एक साधु महाशय बैठे थे वृंदावन में यमुना के किनारे और उनको मैंने जब निवेदन किया उन्होंने कहा कूड़ेदान में वो पारस पत्थर है वो ले जाओ। तो उन्होंने कहा ये तो इस साधु के पास पारस, जिसके पास पारस पत्थर कूड़ेदान में है हाँ उसके पास इससे और मूल्यवान होना चाहिए कुछ, जाओ उसके पास वापस और कुछ मूल्यवान चीज लेके आओ। हाँ अभी वो संतुष्ट नहीं थी, हाँ पत्नी संतुष्ट नहीं थी, हाँ तो भेजा उसको चला गया। गया तो सनातन गोस्वामी के पास, उनको कहा कि महाशय साधु महाशय मुझे इससे मूल्यवान चीज चाहिए, मेरे बेटी की शादी इससे होने वाली नहीं है, पत्नी ने ऐसे कहा है। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि देखो इससे मूल्यवान चीज मैं तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन तुम्हारे हाथ में जो ये पारस पत्थर है ना, ये पहले यमुना देखो नीचे, देखो नीचे, आप वृंदावन जाओ तो देखोगे, हाँ वो जहाँ ये घटना घटित हुई वहां नदी है, नीचे यमुना बह रही है, ऊपर से क्या करो, यमुना में पहले पारस पत्थर फेंक दो, फिर मैं तुम्हें दूंगा। हाँ जैसे बच्चा कोई चीज लेता है ना, पिता को ऑफिस जाना होता है, जल्दी से मोबाइल ले लिया, बेटा मोबाइल दे दो, कहते दूसरी वस्तु पहले दे दो, वो पकड़ाता है तब वो मोबाइल छोड़ता है, तो वैसे ही है। हाँ ये अबोध व्यक्ति जिसको कोई बोध नहीं था, हाँ सनातन गोस्वामी ने कहा फेंको पहले फिर मूल्यवान वस्तु दूंगा, तो उसने फेंका, हाँ जोर से फेंक दिया और अपने हाथ ऐसे फैलाया और सनातन गोस्वामी को कहा, सनातन गोस्वामी आप मुझे दीजिए मूल्यवान वस्तु पारस पत्थर से भी महान। तो सनातन गोस्वामी कहते एक ही मूल्यवान वस्तु है, और वो मूल्यवान वस्तु क्या है, गोलकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये स्वीट कैंडी, स्वीट कैंडी को कहां से भी चखो वो स्वीट ही लगेगी। भक्तों के पास किसी भी प्रकार से जाओ, आपके जीवन में कौन मिलने वाले हैं, कृष्ण है। तो इस प्रकार से ये गया था किसी और दृष्टि से, लेकिन उसको क्या मिल गया, भगवत नाम। हाँ भगवत नाम कृष्ण के भक्तों के माध्यम से मिला। तो कहने का तात्पर्य है कि पहली विधि है या पहला टूल है जिसके द्वारा हम भक्तों के संपर्क में आ सकते हैं, और वो क्या है, यदि व्यक्ति भगवान की महिमा को, भगवान के गुणों को उनके मुख से क्या करता है, निरंतर सुनता है। अब केवल उनके द्वारा श्रवण करने मात्र से ही व्यक्ति के जीवन में भगवत प्राप्ति होना निश्चित ही है। भगवत प्राप्ति ही क्या, व्यक्ति बड़े से बड़े संकट से बच सकता है। एक बार एक चोर चोरी करने गया तो उस घर में कथा हो रही थी, भागवत कथा हो रही थी। तो जब ये चोरी करने गया, सारे लोग, चोरी करने का सबसे अच्छा स्थान क्या है, जिस जगह कथा हो रही हो, कोई कथा से उठता नहीं है, घर वगैरह खुला रहता है सारा, सब बैठे रहते शांति से, तो सब लोग कथा सुन रहे थे उस साधु के द्वारा। और ये चोर वहां से पहुंचा चोरी करने अंदर, सब लोग कथा में मग्न है, और वो साधु बोलते जा रहा था, वो कथाएं बोलते जा रहा था, उसने थोड़ा स्वर्ग का वर्णन किया और बोला कि स्वर्ग में जो देवतागण है वो देवताओं का कभी छाया नहीं पड़ती, छाया पड़ती नहीं है, छाया होती नहीं है, और दूसरा उनके जो पाव है वो कभी जमीन में स्पर्श नहीं करते। तो ऐसे बहुत गुण होते, लक्षण होते देवताओं के, उनमें से ये दो चीजें चोरी करते करते उसके कान में घुस गए। हमें उसको याद रह गया, क्या याद रह गया, जब हम कथा में जाते हैं अपनी काम की चीजें याद रखते हैं, सही है ना, कोई प्रवचन हो रहा हो जो अपने मतलब का है, काम का है, कहा बोला जा सकता है, हाँ लड़ाई झगड़े में या अपने बात को रखने के लिए उतना याद रखते हैं, उतना ले लेते हैं। तो इसने भी चोर के इस काम के थे, उसने ये दो चीजें याद रखी कि देवताओं के पांव जमीन को छूते नहीं है, और दूसरा उनकी शाड़ो या छाया नहीं होती। अभी ये जब चोरी करके माल उठा के गया तो पुलिस को पता चल गया कि इसी व्यक्ति ने लिया होगा, और बाहर से बड़ा सज्जन था लेकिन चोरी का कार्य करता था। तो ये पुलिस वालों ने सोचा कि ये व्यक्ति डायरेक्ट जाओ तो मानेगा नहीं। तो एक पुलिस वाला, उसने क्या किया कि हम दुर्गा का रूप रात को लेके उसके घर में पहुंच जाते हैं, और रात के अंधेरे में दुर्गा के समान प्रकट हो जाते हैं, और उसको बोलते हैं कि आप चोरी किया हुआ सामान वापस करो या स्वीकार करो कि मैंने चोरी की है। तो रात्रि हो गई, ये व्यक्ति सो रहा था, और सोते हुए अचानक एक जो पुलिस है उसने दुर्गा का रूप धारण करके पूरा मेकअप इतने सारे बुझाए लगाकर इसकी जहां सो रहा था वहां ऐसे खड़ा हो गया, कि मैं दुर्गा हूं और आपका विनाश कर दूंगी यदि तुम स्वीकार नहीं करोगे कि तुमने चोरी की है। तो ये व्यक्ति चल गया, अरे दुर्गा साक्षात मेरे सामने, अभी मेरे कोई खैरियत नहीं है, दुर्गा देवी अभी मुझे खत्म कर देगी। फिर इसको अचानक क्लिक हो गया, क्या क्लिक हो गया, क्या सुना था उसने कि देवताओं के पांव जमीन को स्पर्श नहीं करते हैं और दूसरा उनकी छाया नहीं पड़ती। तो पहले देखा दुर्गा देवी तो सही में है कि नहीं, देखा अरे इसके पांव तो जमीन को टच हो रहे हैं और दूसरा इसकी छाया भी पड़ रही है। उसने कहा मैंने चोरी नहीं की। अभी चोर इसमें बच सकता है केवल सुनने मात्र से। तो यदि हम सही रूप से सही भावना से भगवान के बारे में भक्तों के द्वारा रेगुलर श्रवण करेंगे तो निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति हो सकती है। जैसे भागवतम में उदाहरण आता है, फेमस उदाहरण इसका रुक्मिणी देवी का। जो रुक्मिणी है वो विदर्भराज की कन्या थी, भीष्मक की एकमेव पुत्री थी। तो ये जो भीष्मक महाराज बहुत धार्मिक राजा थे, तो नारद मुनि हमेशा उनके घर जाते थे और नारद जब भी जाते थे तो ये भीष्मक बैठ जाते थे नारद के सामने और नारद हमेशा भगवान के बारे में बोलते जाते थे, भगवान कृष्ण का गुणगान करते थे। तो ये जो रुक्मिणी है ये कभी कभी शर्मा कर पर्दे के पीछे खड़ी होकर भगवान के बारे में सुनती थी या कभी कभी अपने माता पिता के पास बैठकर सुनती थी। तो जब भी भगवान के बारे में उन्होंने सुनती रही, भक्तों के द्वारा सुनती रही, तो रुक्मिणी देवी को भगवान कृष्ण के प्रति क्या हो गया, प्रेम और भक्ति की भावना उनके हृदय में जागृत हो गई। हाँ, इसलिए रुक्मिणी देवी भागवतम में कहती है कि शो उपश्रुत्य मुकुंदश रूप वीर्य गुणाश्रिया। वो कहती है कि जब से मैंने भगवान कृष्ण के बारे में भक्तों से सुना है, उनके गुण, उनका सौंदर्य, उनकी इतनी सारी लीलाएं, तब से वो कहती है कि मैं किसी और को अपने जीवन में पति के रूप में चुनूंगी नहीं, मेरे पति होंगे तो कौन होंगे, कृष्ण होंगे। ऐसा भावना कैसे आ गया था उसके हृदय में, केवल भक्तों के माध्यम से निरंतर भगवान कृष्ण के बारे में सुनने से। तो ये पहली विधि है जिसके द्वारा हम भक्तों के संपर्क में आते हैं और वो है कि भगवान के बारे में अधिक से अधिक निरंतर एकाग्र चित्त होकर निरंतर श्रवण करना। जैसे परीक्षित महाराज ने शुकदेव गोस्वामी से सुना था, शुकदेव गोस्वामी से उन्होंने सुना, परीक्षित की तो 7 दिन में मृत्यु होने वाली थी। परीक्षित महाराज ने कुछ और उपाय नहीं सूझा उनको, वो केवल सारी चीजों को साइड में छोड़कर शुकदेव गोस्वामी के चरणों में बैठे और उनके पास बैठकर उन्होंने कहा कि मुझे क्या करो, कृष्ण के बारे में आप वर्णन करते जाइए। और शुकदेव गोस्वामी क्वालिफाइड वक्ता थे, उन्होंने भगवान कृष्ण का गुणगान किया और इतना गुणगान किया कि जिसके द्वारा 7 दिनों में परीक्षित महाराज का जो मन है किसमें लग गया, कृष्ण में, हुक जिसको कहते हैं, हाँ कृष्ण में लग गया। तो आध्यात्मिक जीवन का सार है कि हमारा ये जो पागल मन है किसमें लगना चाहिए, कृष्ण के चरण कमलों में। तो ये पहली विधि है कि भक्तों के द्वारा हमें निरंतर अधिक से अधिक भगवान के बारे में सुनना। और दूसरा है जिसके द्वारा हम भक्तों के संपर्क में आते हैं, क्या है कि ऐसे जो महान भक्त हुए हैं भगवान के, उनके चरित्र के बारे में सुनना। जैसे श्रील प्रभुपाद है, पूर्ववर्ती जो महान महान भक्त हुए हैं, प्रहलाद है, प्रहलाद को कितने कष्ट मिले हिरण्यकश्यप के द्वारा, फिर भी उन्होंने भगवान की भक्ति को छोड़ा नहीं है। पांडवों को ले लो, इस संसार में हमें थोड़ा सा कष्ट आता है तो हम सब कुछ त्याग दे देते हैं, सबसे पहले भगवान को त्यागते हैं। लेकिन पांडव ऐसे थे, पांडवों के जीवन में और विशेष रूप से कुंती के जीवन में इतने अधिक कष्ट थे कि कुंती ने अपने जीवन में कभी कंप्लेन नहीं की। इसको कहते हैं सहनशीलता, क्योंकि भक्ति के रास्ते में चलना है तो एक गुण को तो निश्चित रूप से जीवन में लाना पड़ेगा, और वो कौन सा है? सहनशीलता। या सहनशीलता होगी तभी हम इस भक्ति पथ पर चल सकते हैं। पांडवों के जीवन में देखो, बचपन से लेकर अंत समय तक निरंतर कष्टों से भरा पड़ा है, लेकिन कुंती कभी कंप्लेन नहीं करती, बल्कि कुंती प्रार्थना करती है। अपनी प्रार्थना में कुंती महारानी कहती है कि हे कृष्णा, मेरे जीवन में और अधिक कष्ट आने दो। हाँ, क्यों आने दो कष्ट? क्योंकि जब कष्ट आते हैं तो मेरा हृदय, मेरा मन आपके स्मरण से क्या हो जाता है? भर उठता है। हाँ, आपका दर्शन हो जाता है। ऐसा इतना बड़ा हृदय, इतनी बड़ी भावना कुंती महारानी के हृदय में थी, और वैसी भावना किसमें थी? पांडवों में थी। हाँ, तो ऐसे नहीं है, भगवान ने किसी भी स्थान में ये नहीं कहा भक्ति करोगे तो दुखों से मुक्त हो जाओगे, कहीं भी नहीं मिलेगा। हाँ, भगवत गीता पढ़ोगे तो कष्ट जीवन में आएंगे नहीं, ऐसा गीता में भी वर्णन नहीं है। कष्ट आएंगे, दुख आएंगे, लेकिन क्या एक चीज हमारे अंदर आएगी? उसको सहन करने की पावरफुल क्षमता हमारे अंदर आएगी। इसलिए जो विपदा है वो हमें भगवत भक्ति से हिला नहीं सकती, उससे हम प्रभावित नहीं होंगे, ये विशेषता है। इसी कारण से पांडवों का जीवन हम देखते हैं। इसी कारण से दूसरी सबसे शक्तिशाली विधि है भक्तों के संपर्क में आने की, कि जो महान महान भक्त हुए हैं उनके चरित्र आदि को क्या करना चाहिए? हमें सुनना चाहिए। इवन स्वयं भगवान कृष्ण सुनते हैं। हाँ, द्वारका में जब ये सारे रानियों के महल में माता रोहिणी जब वृंदावन के भक्तों का वर्णन कर रही थी, तो भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा आकर कहाँ सुनते हैं? दरवाजे में खड़े रहकर सुनते हैं। किसके बारे में? वृंदावन के भक्तों के बारे में। वृंदावन के भक्तों का प्रेम, वृंदावन के भक्तों का समर्पण, वृंदावन के भक्तों का भगवान के प्रति सेवा की भावना, कि जो परा सर्वोच्च जो सीमा है उसका वर्णन जब रोहिणी कर रहे थे, तो उसको सुनने के लिए स्वयं कृष्ण भी आ गए थे। तो इसलिए ये दूसरी विधि है कि हमें प्रयास करना चाहिए भगवान के महान भक्तों के बारे में जानने का, उनके बारे में पढ़ने का, उनके बारे में समझने का। और तीसरी जो विधि है, यदि हम भक्तों के चरित्र को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो क्या होता है? एक चीज हमारे अंदर आती है। कौन सी? सबसे पहले तो उनके अंदर जो गुण है वो गुण थोड़े थोड़े हमारे अंदर आते हैं, और दूसरा भक्ति करने के लिए जो दृढ़ता है, डिटर्मिनेशन है, वो भावना हमारे हृदय में वृद्धिंगत होती है या बढ़ती है। इसी कारण से हमें भक्तों के चरित्र को सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका जीवन या उनका हृदय केवल कृष्ण के लिए है। प्रभुपाद कहते हैं यही अंतर है एक भौतिकतावादी व्यक्ति का और एक भक्त का, कि उसका हृदय केवल कृष्ण के लिए है, इसलिए वो आनंदमय है। और एक भौतिकतावादी है जिसके हृदय के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, भगवान को लेकर सारी दुनिया को बांट दिया है, इसलिए वो दुखी है। हाँ, जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं किसका? एक मगरमच्छ का और बंदर का। प्रभुपाद कहते हैं कि एक बंदर और एक मगरमच्छ आपस में बहुत अच्छे मित्र थे। आपने सुना होगा वो स्टोरी। हाँ, इतनी अच्छी मित्रता, हाँ, एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे। मगरमच्छ उसको बोट राइड कराता था पानी में। हाँ, एक जलाशय था, तालाब, उसके किनारे वृक्ष था, उसमें बंदर रहता था, पानी में मगरमच्छ। जब बंदर की इच्छा होती थी बोट राइड करने की, तो वो जंप मारता था उसके पेट पर, पानी में घूम घूम के आ जाता था। तो अभी मगरमच्छ का जो शादी की सालगिरह आ गई, हाँ, तो मगरमच्छ की जो पत्नी थी उसने कहा आज शादी की सालगिरह है, वेडिंग एनिवर्सरी, आज तो मुझे कुछ क्या है गिफ्ट गिफ्ट चाहिए चाहिए। अभी कौन बात नहीं मानेगा, फिर सालगिरह थी। उसने पूछा बड़े विनम्रता से क्या लाऊं आपके लिए। उसने कहा मुझे बंदर का कलेजा चाहिए। अभी इसका मित्र था, इसने कहा पत्नी बोली रही और वो भी सालगिरह के दिन, हाँ मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो बड़ा अंदर से दुखी हो रहा था। अभी नॉर्मल प्रतिदिन हर रोज की तरह ये आ गया, देखा उसका मित्र बंदर खुश है इसको देखकर, आके जंप मार दिए इसके पीठ पर। फिर अंदर गए, इन्होंने कहा मैं आपको घुमा के ले आता हूँ अंदर अंदर। ये मगरमच्छ उनको ले जाता है अंदर, घुमाता है और फिर वो कहता है कि देखो आज सालगिरह है हमारे शादी की और मेरे पत्नी ने विशेष डिमांड रखी है। बंदर को लगा कुछ अलग से डिमांड होगी, उसको पता नहीं इसका एक मृत्यु की परीक्षा होने वाली है। उसने कहा कि वो तो तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है। बंदर तो वही मूर्छित होने वाला था, लेकिन ददामि बुद्धि योगम तम माम यानो, भगवान बुद्धि देते हैं जब हम बचना चाहते हो माया के प्रहार से। तो उसको बुद्धि आ गई, उसने कहा अच्छा, पहले तो बोला मित्र अरे तुम्हारे लिए कलेजा क्या, पूरा जीवन देने के लिए तैयार, लेकिन देखो हमारी बंदर की जात है, वो हमेशा इस टहनी से उस टहनी तक, इस पेड़ से उस पेड़ पर कूदते रहते हैं, तो ये कलेजा या हृदय गिरने के चांसेस सबसे ज्यादा है, इसलिए हम क्या करते हैं टांग के रखते हैं, तो किसी जगह टांग देते हैं और फिर घूमते कूदते रहते हैं। अब ये बुद्धू मगरमच्छ, उसको इतना ध्यान नहीं था, वो उसने कहा ठीक है, उसने कहा चलो मुझे वापस ले लो तट पर ले लो। फिर उसे तट पर ले गया और जैसे ही पेड़ नजदीक आ गया, बंदर के अंदर जितनी शक्ति थी वो लगाया जोर, कूद के बन जाकर बैठ गया पेड़ के ऊपर और उसने कहा हरे कृष्णा। उसने कहा अभी अभी नहीं आने वाला। तो उसी प्रकार से वो बंदर का हृदय कहाँ टांग के रखता है, बंदर पेड़ के ऊपर टांगा था उसने, इससे बच गया। उसी प्रकार से भक्तों का चरित्र आदि हमें क्यों सुनना चाहिए, क्योंकि उनका हृदय कहाँ टांगा हुआ है, कृष्ण के चरणों में। हाँ वो इधर उधर हृदय नहीं देते, इधर उधर हृदय अटकता नहीं है, इसलिए हमेशा एक ही जगह लटकाते हैं हृदय को। कहाँ लटकाते हैं, चरणों में। इसलिए भागवत में एक विशेष श्लोक आया है जिसमें कहा गया है सारंगानां पदांगुजं, सारंग ये शब्द भक्तों के लिए इस्तेमाल किया गया है कि भगवान के भक्तों का एक भी आश्रय स्थान है, निवास स्थान है, वो है भगवान के चरण कमल। इसलिए गंगा से भी श्रेष्ठ भगवान के भक्त है। क्यों श्रेष्ठ है, गंगा बेचारी भगवान के चरणों से जन्म ली लेकिन भगवान के चरणों से दूर भाग रही है। कहां भाग रही है, दूर। और भगवान के भक्त दूर दूर जन्म लिए हैं लेकिन वो खुद कहां भाग रहे हैं, भगवान के चरणों में। और जो भी उनके संपर्क में आता है उसका गर्दन पकड़ते हैं, उसको भी लेकर चलते हैं भक्तों के, भगवान के चरणों में। ये विशेषता है, इसलिए शास्त्र कहते हैं गंगा से भी भगवान के भक्तों का जो स्थान है वो सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। इसी कारण से भगवान के भक्तों का जो चरित्र है वो सुनना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि उनका हृदय केवल किसके लिए है, कृष्ण के लिए। इसलिए श्रीमती राधा रानी सर्वश्रेष्ठ भक्त है। जब राधा रानी पहली बार द्वारका गई तो ये रानियों को बड़ा घमंड था, उनको लगता था हमसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। जब उन्होंने सत्यभामा, एक सबसे अहंकार एक रानी को था द्वारका में कृष्ण की, सत्यभामा, वो हमेशा सोचती थी मुझसे सुंदर कोई नहीं है विश्व में। लेकिन जब पहली बार राधा रानी जब वहां प्रवेश की द्वारका में, जब सत्यभामा रानी आदि ने देखा राधा रानी के सौंदर्य को, देख कर वहां मूर्छितों की गिर पड़े। सत्यभामा उसको जगाया, उठ उठ अभी उठो। और क्या विशेषता थी, हाँ श्रीमती राधा रानी की, भगवान जब आए राधा रानी द्वारका में, तो कृष्ण कहते हैं कि राधा रानी हाँ रोज क्या ग्रहण करती है, शाम को दूध, हाँ दूध ग्रहण करती है। तो रुक्मिणी देवी कहती कि मैं आज दूध दूंगी उनको, दूध ग्लास में दूंगी। तो रुक्मिणी देवी दूध लेकर जाती है और राधा रानी पूरा दूध पी लेती है ग्लास। और जब वापस रुक्मिणी देवी आती है अपने महल में, कृष्ण तो हजारों रूपों में प्रकट थे हर महल में, तो उनके महल में जो कृष्ण थे रुक्मिणी के, उनके चरण दबा रहे थे रुक्मिणी देवी, तो देख रहे थे कि चरणों में क्या हो गए हैं, फोड़े आ गए हैं, छाले हो गए हैं। तो रुक्मिणी देवी पूछती है कि हे कृष्णा आपके चरणों में छाले कैसे हैं? हाँ तो कृष्ण कहते हैं क्योंकि ये चरण सदैव कहाँ रहते हैं, राधा रानी के हृदय में, और आपने गरम गरम दूध पिलाया है, अति गरम अति उष्ण, ये शब्द यूज हुआ है, अति उष्ण दूध पीने के कारण, हाँ क्योंकि मेरे चरण सदैव उनके हृदय में वास करते हैं, जिसके कारण उसका एक प्रभाव देखो। तो इससे हम समझ सकते हैं कि भक्तों के आश्रय स्थान या भक्तों का हृदय केवल कृष्ण के लिए है। जब उनके बारे में हम सुनते हैं तो हमारे हृदय में भी वही भावना जागृत होती है, उसी प्रकार का भाव आ जाता है। हाँ इसलिए शास्त्र कहते हैं भक्तेर हृदय सदा सतत कृष्णेर विश्राम, कि भक्तों के हृदय में सदैव कृष्ण विश्राम करते हैं। और तीसरी चीज है जिसके द्वारा हम भक्तों के संपर्क में आते हैं, और वो है भक्तों के जो उपदेश है उनका क्या करना, पालन करना। पहले विधि क्या थी, भक्तों के द्वारा भगवान के बारे में सुनना। तीन चीजें हमेशा याद रखो जीवन में, हमेशा भक्तों के द्वारा भगवान के बारे में निरंतर सुनो। हाँ जिसके द्वारा हम भगवान को जान सकते हैं, कृष्ण को अपना बना पाते हैं, ये पावरफुल विधि है। और दूसरा है जो महान भगवान के भक्त हुए हैं उनके चरित्र आदि को सुनना, चर्चा आदि करना। और तीसरा है ऐसे भक्तों के उपदेशों के अनुसार हम यदि कार्य करते हैं तो भगवान हमारे हो जाते हैं। जैसे वाल्मीकि, हाँ देखो कितने बड़े डाकू थे, रत्नाकर डाकू, कितना परिवार के लिए दुष्कर्म कर रहा था व्यक्ति, इतना कि नारद और उनके मित्र पर्वत मुनि जा रहे थे जंगल से तो उनको भी छोड़ा नहीं, गर्दन पकड़ने वाले थे नारद की, लेकिन नारद ने बिना ऐसे ऊपर कर दिया, उशांत हो गया। इसने कहा अरे मूर्ख तो इतना पापमय कार्य करने जा रहे हो, हाँ इतने लोगों की हत्या कर रहे हो, धन लूट रहे हो, किसके लिए सारा कार्य करते हो? हाँ व्यक्तियों पूछे किसके लिए करते हो, एक ही उत्तर है सबके पास, किसके लिए, परिवार के लिए, पेट के लिए। हाँ तो वैसे ही उन्होंने बोला परिवार के लिए कार्य करता है सब पाप आदि, तो नारद ने कहा पाप के परिणाम उनको बताए, और फिर कहा कि ये पाप जो कर रहे हो परिवार के लिए, घर में जाकर पत्नी और बच्चों सबसे पूछो कि जो तुम पाप कर रहे हो उनके लिए उसमें वो भागीदार होंगे या नहीं, हम इधर ही खड़े रहेंगे। नारद और पर्वत मुनि ने बोला, तो ये गया पत्नी के पास, पत्नी के पास गया और उनको बोला ये जो पाप कार्य कर रहा हूँ, वध कर रहा हूँ, लोगों को मार रहा हूँ, लूट रहा हूँ, इसमें आप पाप में भागीदार बनोगे? तो पत्नी ने अपने दोनों हाथ ऊपर किए, किसके लिए, हरे कृष्ण मंत्र बोलने के लिए नहीं, उसने दोनों हाथ ऊपर किए, बोले आप मुझे अपने घर में लाए हो शादी करके, पाप करो जो मर्जी करो, मैं भागीदार नहीं हूं, मुझे तो अपना हिस्सा चाहिए, धन चाहिए, सुविधा चाहिए, सब कुछ चाहिए। अभी इसका वो गिरने वाला था वहां, उसने सोचा बच्चे चार पांच है उनको पूछता हूँ, बच्चों के पास गया, बच्चों के पास जाकर बच्चों को बोला, बच्चे तो सारे गेम खेलने में मगन थे, बच्चों को जब बोला तो बच्चों ने कहा पिताश्री नहीं, आपने हमें इस जगत में लाए हैं, हम तो आने वाले नहीं थे, कारण कौन है? आप हैं। तो आपको हमारा पालन पोषण करना होगा, हम पाप में भागीदार नहीं बनेंगे। ये व्यक्ति बिल्कुल अभी खत्म हो रहा था तो वो गया द्रौपदी में, किसके पास गया? नारद मुनि के पास। नारद के पास जाकर चरणों में दंडवत नारद ने कहा, इस संसार में कोई किसी का नहीं है, कोई भागीदार नहीं होगा पाप में। हाँ, तो नारद मुनि ने कहा, ठीक है, इतने पाप किए हैं तुमने, उसने कहा कुछ उपाय बताओ। तो नारद मुनि ने कहा एक ही उपाय है। नारद मुनि ने बहुत लोगों का उद्धार किया है, और नारद मुनि कभी भेदभाव नहीं बरतते, उनके सब प्रकार के शिष्य हैं, राजा लोग, डाकू, लुटेरे, इवन सांप भी उनके भक्त हैं। हाँ, कई प्रकार के प्राणी भी उनके शिष्य हैं। तो ऐसे हैं, नारद ने कहा इतने तुमने पाप किए हैं, तो एक उपाय है, क्या करो? भगवान के नामों का उच्चारण। तो कौन से नाम बोला उनको? राम। अभी इतना पाप किया था कि राम जिह्वा से निकल नहीं रहा था। व्यक्ति के मुख से जब नाम नहीं उच्चारण हो रहा है, जप करने की इच्छा नहीं हो रही है, इससे समझना चाहिए कि मेरे पाप मुझे क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं। ये जिह्वा दिन भर कई चीजें खाने में चलती है, बोलने में, गालियां देने में, लड़ाई करने में चलती है, लेकिन बोला जाए क्या उच्चारण करो? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तब ये जीवा बिल्कुल नहीं चलती, रुक जाती है। तो ये समझना चाहिए अपने जीवन में, जब करने की इच्छा नहीं हो रही है, नाम लेने की इच्छा नहीं हो रही है, मतलब मेरे जो जीवा है, मेरे जीवन में पाप अधिक है। पाप जब व्यक्ति पर बोझा हो जाता है किसी चीज का, उसको चलना क्या होता है? कठिन होता है। उसी प्रकार से जब पाप अधिक होता है तो सरलता से भगवत नाम लेना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। है कितना सरल? हाँ, बहुत सरल है भगवान नाम लेना। तो इससे बोला नहीं जा रहा था, क्या बोल रहा था? मरा मरा, ये चीज हजारों बार हमने सुनी है। वो बोल रहा था मरा मरा। नारद बोले ठीक है, चलो शुरुआत कर रहा है, लाभ निश्चित है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कोई व्यक्ति ये शब्द भी बोलता है ना, हराम, क्या बोलता है? मुस्लिम बोलते हैं ना हराम, हराम आता है ना उसमें, तो वो भी बहुत लाभदायक है उस व्यक्ति के लिए। कोई हराम बोल के गाली भी दे रहा है किसी को, नाम का एक विशेष प्रकार है, तो उससे भी उसके जीवन में सुकृति अर्जित होती है, वो भी कालांतर में भक्त बन सकता है। तो इसने मरा मरा का उच्चारण शुरू किया, और नारद ने जो बोला उस वाणी पर अड़िग रह गए। कुछ भी हो जाए मुझे आपे क्या करना है, क्या बोलना है? मरा निकल रहा है चलेगा, राम बोल के रहना है मुझे। और ये बिल्कुल बैठ गए रत्नाकर डाकू, और मरा मरा का उच्चारण कर रहे थे। नारद ने बोला बैठ के जप करते रहो, मरा मरा करते रहे। और फिर बहुत दिन हो गए, नारद मुनि के बेस्ट फ्रेंड है जिनका नाम है पर्वत मुनि, ये हमेशा दोनों घूमते रहते हैं। तो पर्वत मुनि को कहा, चलो पर्वत मुनि हम चलते थोड़ा देखते, एक व्यक्ति को हमने बोला था, ढूंढते वो क्या कर रहा है। तो गए तो देखा कि ये तो वहां से देखा एक क्या कहते हैं उसे, चींटियों का जो वाल्मीकि आ जाता है, इसके उनके कारण उनका नाम वाल्मीकि मुनि पड़ा। हाँ, चींटियों ने जो घर बनाया, ऐसे पहाड़ जैसा बनाया था मिट्टी का, वो बन गया था उनके ऊपर। इतना एकाग्रता से वो हरि नाम ले रहे थे और राम राम आवाज सुनाई दे रहे थे। तो ये दिखा रहे आवाज कहाँ से आ रही है, व्यक्ति तो दिखाई नहीं दे रहा। फिर पता चला कि ये जो मैंने उनको उपदेश दिया था, ये गंभीरता से लगे हुए थे। हाँ, और ये ऐसे पावरफुल ये ऋषि बने, वाल्मीकि मुनि बने, कि भगवान राम के लीलाओं का वर्णन पहले ही उन्होंने कर दिया रामायण में, भगवान राम की असीम महिमा मंडित लीलाओं का वर्णन। तो कहने का तात्पर्य है कि भक्तों, भक्ति को जानना है या भगवान को जानना है या भक्ति को अपने जीवन में प्राप्त करना है, तो सबसे पहले भक्तों के संपर्क में आना होगा। और भक्तों के संपर्क में हम आते हैं इन तीन चीजों से। एक है उनके माध्यम से, उनके द्वारा भगवत चर्चा का जब हम निरंतर श्रवण करते हैं, उससे हम भगवान को समझ सकते हैं या प्राप्त करते हैं। जैसे बहुत सारे उदाहरण, एक उदाहरण रुक्मिणी का दिया था हमने। और दूसरा है ऐसे जो महान भक्त हुए हैं उनके चरित्र आदि को सुनना, जानना, चर्चा करना। जैसे प्रहलाद है, पांडवास है, कुंती है, प्रभुपाद है, हजारों हजारों भक्त हैं। और तीसरी चीज क्या है, ऐसे जो भगवान के भक्त हैं उनके जो उपदेश है, जो हमें प्राप्त होते हैं और आज्ञा है, उसको क्या करना, हमें अपने जीवन में पकड़ के रखना, जिसके द्वारा हम चाहे जितने मर्जी पापी तापी हो, कुछ भी दुर्गुण क्यों ना हो हमें, निश्चित रूप से हम महान भक्त बन सकते हैं, भक्त बन सकते हो गए, लेकिन यदि हम ये करेंगे तो इसलिए हमारा सौभाग्य है कि तीनों प्रकार का संग हमें प्रदान किया है। किसने? श्रील प्रभुपाल ने सारे विश्व के लोगों के लिए मंदिर दिए, ग्रंथ दिए, सब प्रकार की सुविधा दी, केवल कृष्ण को समझने के लिए। तो मैं यहाँ विराम देता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।